नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिकरण का किया आह्वान। विश्व नेताओं के उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए मानव विजन का किया अनावरण। कहा, एआई से दुनिया को तभी लाभ होगा जब इसे साझा किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे विश्व में बताया आदित्य। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी परनायक ने आज ईटानगर स्थित ओजो मिशन के बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों का एक संग्रह किए भेंट। अरुणाचल प्रदेश के निशी जनजाति का 47वां न्योकुम यूलो पर्व का ईटानगर के न्योकुम लापंग ग्राउंड में हो रहा है आयोजन। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग एडवेंचर विलेज में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 के पहले संस्करण का शुभारंभ। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय। रविवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लोकतांत्रिकरण पर बल देते हुए कहा है कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनाना चाहिए। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं बल्कि उन्हें तेजी से अपना भी रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है कि नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय जुड़ रहा है। श्री मोदी ने एआई के लिए मानव विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है नैतिक और सैद्धांतिक प्रणाली, जवाबदेही शासन, राष्ट्र संप्रभुता, सुलभ और समावेशी, वैध और न्याय संगत।
मानव विजन कहता है एम मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, ए अकाउंटेबल गवर्नेंस एंड नेशनल सॉवरेनिटी, ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वी वैलिड एंड लेजिटिमेट। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पिछले साल फ्रांस की सह मेजबानी में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में इस तकनीक के लिए वैश्विक मार्गदर्शन सिद्धांत तय किए गए थे।
पिछले साल जब फ्रांस और भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी, तो हमने उन तकनीकों के लिए वैश्विक दिशा निर्देश तय किए थे जो हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता का कल्याण करने की दिशा में काम करेगा और दोनों देश इस क्रांति में विश्वास करते हैं।
भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए श्री मैक्रों ने कहा है कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया के किसी अन्य देश ने नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए डिजिटल पहचान है, एक भुगतान प्रणाली है जिसमें हर महीने 20 अरब लेन देन होता है और स्वास्थ्य अवसंरचना है जिसके अंतर्गत 50 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जारी किए गए हैं। एनालिटिक्स के संस्थापक डॉ हर्षित मिश्रा ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कई स्टार्टअप इस समिट में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें से कई स्टार्टअप सफल होने के वाली है और कृषि में जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों और अन्य विशिष्ट मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
We are building climate risk intelligence platform.
हम बेहतर कृषि के लिए जलवायु जोखिम प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण फसलों और जलवायु के बीच परस्पर संबंध को समझने के लिए मशीन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मौसम के आधार पर फसल प्रबंधन की पद्धतियां, उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियां और वास्तविक समय की जानकारी शामिल है ताकि हम अपना मॉडल बना सकें। ये शिखर सम्मेलन सभी नव प्रवर्तकों को एक साथ आने का मंच प्रदान करता है।
बच्चों में जिज्ञासा, संस्कार और कल्पना शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी परनायक ने आज ईटानगर स्थित ओजो मिशन के बच्चों को लोकभवन ईटानगर में पुस्तकालय की पुस्तकों का एक संग्रह भेंट किया है। अपने प्रयास के तहत राज्यपाल ने 150 से अधिक पुस्तकें प्रदान की। इस संग्रह में अमर चित्र कथा, कॉमिक्स, प्रेरणादायक व्यक्तियों और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर पुस्तकें, रामायण और महाभारत के चित्रात्मक संस्करण, पंचतंत्र की कहानियां, आविष्कार और खोज से संबंधित पुस्तकें तथा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की गाथाएं शामिल है। बच्चों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने उन्हें नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमारे साथी होते हैं जो ज्ञान का विस्तार करती है, चरित्र को मजबूत बनाने और अवसरों के लिए द्वार खोलते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि अच्छी पुस्तकों तक पहुंच बच्चों को बड़े सपने दिखाने, निरंतर सीखने और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने वाले जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। निशु जनजाति का 47वां न्योकुम युलो पर्व ईटानगर के न्योकुम लापंग ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। सप्ताह भर चलने वाला यह पर्व आगामी 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। पर्व का उद्घाटन स्वदेशी मामलों के विभाग के उपनिदेशक ताओ ताकार की उपस्थिति में की गई। समारोह के अंतर्गत कई आकर्षक और विशिष्ट स्टॉल भी लगाए गए हैं। पारंपरिक खेल इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्घाटन दिवस पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जबकि आगामी कार्यक्रमों में पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं, टग ऑफ वार, तीरंदाजी, दापो बांगनाम एवं पारिक रंगनाम शामिल है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया द्वारा एक निबू नामलो यानी शामन हाउस का भी उद्घाटन किया गया। राज्य के अपर सियांग जिला उपायुक्त द्वारा यिंग्क्योंग के एडवेंचर विलेज में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 के पहले संस्करण के दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई गई। यह प्रतियोगिता आर्मी फायर ब्रिगेड आलो द्वारा साहसिक खेलों, शारीरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक आयोजित की जा रही है। इंडोनेशिया और नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे दो अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने आज के प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो साहसिक चुनौती की वैश्विक भावना को दर्शाते हुए प्रतिभा देशों के बीच भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। एवेन्यू फॉर जॉय फाउंडेशन द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति पापुपारे के सहयोग से प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण सह सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आगामी 21 फरवरी 2026 को बंदर देवा स्थित न्योकुम कम्युनिटी हॉल में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आम जनता को आवश्यक प्राथमिक उपचार कौशल के बारे में शिक्षित करना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुफ्त योजनाओं की संस्कृति से देश के आर्थिक विकास में बाधा आ रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचौली की पीठ ने कहा है कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी विकास की अनदेखी करते हुए वे इस तरह के व्यापार कर रहे हैं। न्यायालय ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। याचिका ने कहा है कि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव किया गया था। पीठ ने कहा है कि राज्य को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार सृजन पर काम करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस तरह से मुफ्त की योजनाएं शुरू करने से कोई कार्य नहीं करना चाहेगा। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय हो गए हैं। ग्रुप ए में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे हैं, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। शनिवार को टूर्नामेंट के अगले दौर में 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला खेलेंगी। रविवार को ग्रुप ए में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई देने के साथ ही आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह महीना समाज में एकता की भावना को और मजबूती प्रदान करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिकरण का किया आह्वान। विश्व नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए मानव विजन का किया अनावरण। कहा एआई से दुनिया को तभी लाभ होगा जब इसे साझा किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे विश्व में बताया आदित्य। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी परनायक ने आज ईटानगर स्थित ओजो मिशन के बच्चों के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों का संग्रह किए भेंट। अरुणाचल प्रदेश के निशी जनजाति का 47वां न्योकुम युलो पर्व का ईटानगर के न्योकुम लापंग ग्राउंड में हो रहा है आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।